राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन
प्रभुपाद जय जय स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नष्टप्रायेष्व भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 20वां अध्याय। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 8।
आत्मस्थं
वेद
वेद
पुरुषः
पुरुषः
न अज्यते
अज्यते
प्रकृति
प्रकृति
स्थः
स्थः
अपि
अपि
तद्गुणैः
तद्गुणैः
सह
सह
मयि
मयि
स्थितः
स्थितः।
य एवं संतमात्मानं
य एवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः।
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः समयि स्थितः
तद्गुणैः समयि स्थितः।
य एवं संतमात्मानं
य एवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः।
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः स मयि स्थितः
तद्गुणैः स मयि स्थितः।
य एवं संतमात्मानं
य एवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः।
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः स मयि स्थितः
तद्गुणैः स मयि स्थितः।
यैवं संतमात्मानं
यैवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः
नाज्यते
प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः
समयि स्थितः
य एवं संतमात्मानं
य एवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
नाज्यते प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः समयि स्थितः
तद्गुणैः समयि स्थितः य एवं संतमात्मानं आत्मस्थं वेदपुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः समयि स्थितः
य एवं संतमात्मानं
य एवं संतमात्मानं
आत्मस्थं वेदपुरुषः
आत्मस्थं वेदपुरुषः
नाज्यते
प्रकृतिस्थोपि
तद्गुणैः समयि स्थितः
यः जो कोई एवं इस प्रकार
संतम
विद्यमान आत्मानम्
आत्मा तथा परमात्मा
आत्मस्थम्
अपने शरीर के भीतर स्थित
वेद जानता है
पुरुष
न कभी नहीं
अज्यते
प्रभावित होता है प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थित अपि
यद्यपि
तद्गुणैः प्रकृति के गुणों से सह ऐसा व्यक्ति
मयि
मुझमें
स्थित
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। तात्पर्य जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो भगवान के संबंध हैं वे भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसका वर्णन भगवद गीता में बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है 24वें अध्याय के 26वें श्लोक में। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सहस हर्ष परेस हरे राम प्रभु सूरज तालपक सूरज आता एकदम ढगाळ होतं वातावरण इकडे सूरज आला की एकदम सूरज बाहेर हरी बोल कसं आहे बरे आहेस ना तो उद्धव हरी काय
कुकिंग
अच्छा अच्छा और कौन
अक्षय
कुकिंग कर रहे तो टाइमिंग ऐसे होना चाहिए कि सब लोग आ सके क्लास में विलंब हो गया ठीक है सबको आध्यात्मिक पोषण चाहिए श्रवण के द्वारा भी नहीं तो सेवा भाव खराब हो जाता है तो टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि सभी आ सकते हैं क्योंकि सेवा और श्रवण में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है श्रवण भी सेवा है परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा इस सेवा के बिना अन्य सेवा हम सही भावना से नहीं कर पाएंगे भावना खराब हो जाएगी हमारी फिर बोझ लगने लगेगा इसलिए श्रवण होना बहुत आवश्यक है श्रवण ठीक होगा तो सेवा भाव ठीक होगा श्रवण से ज्ञान मिलता है आत्मा और परमात्मा के कि जैसे यहाँ भगवान विष्णु बता रहे हैं पृथ्वी महाराज को ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है तो श्रवण करने से क्या होता है श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है पहला लाभ किसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा और परमात्मा के बारे में दोनों का ज्ञान आवश्यक है केवल आत्मा का ज्ञान होना इतना पर्याप्त नहीं है इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग सो हम कहते हैं या हम ब्रह्मास्मि कहते हैं उनका ज्ञान सही है परंतु अपूर्ण है क्योंकि केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना इतना पर्याप्त नहीं है आत्मा कहाँ से आए आत्मा का क्या कर्तव्य है इस वातावरण में तो जब तक हम इस भौतिक सृष्टि का ज्ञान नहीं प्राप्त करते परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करते आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहलाता है इसलिए भगवद गीता के जो पांचों विषय हैं उन पांचों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए और वो श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता है सेवा व्यक्ति क्यों करता है ज्ञान के द्वारा ज्ञान हो और सेवा न हो तो फिर ठीक नहीं। तो जिस प्रकार से श्रवण के बिना सेवा भावना नष्ट हो जाएगी, उसी प्रकार से सेवा के बिना श्रवण का भी पूर्णतया मूल्य नहीं रहता है। क्यों? हम केवल श्रवण 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 करते हैं, सेवा नहीं करते। ये याद रखना कि श्रवण भी सेवा है, परंतु जब हम अब सेवा की बात कर रहे हैं, श्रवण से अतिरिक्त सेवाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम केवल श्रवण श्रवण करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा?
सेवा
साक्षात्कार
साक्षात्कार
उसका साक्षात्कार नहीं होगा। एक दृष्टि से केवल बैठ के व्यक्ति सुनेगा तो भी ठीक है, लेकिन उतनी भी एक एकाग्रता चाहिए, उतनी भी रुचि चाहिए कि दिन भर बैठ के हम श्रवण ही कर सकें और आयु भर हमारे पूर्ण जीवन भर ऐसे ही कर सके। कर सकते हैं कोई? यदि हम यहाँ पे 15 घंटे रोज प्रवचन का आयोजन करें, केवल बीच में प्रसाद के लिए थोड़ी छूट, कितनी देर तक हम कर पाएंगे, कितने दिनों तक? फिर बोलेंगे बस हो गया, अभी मुझे सेवा में जाना है। तो जब हम सेवा और श्रवण की बात करते हैं, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम केवल सेवा करेंगे श्रवण नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते हम केवल श्रवण करेंगे सेवा नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर पोषक हैं। श्रवण करने से सेवा भाव विकसित होती है, सेवा करने से श्रवण का साक्षात्कार होता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। प्रभुपाद एक बार प्रवचन में बोलते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं, प्रभुपाद पहले बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। परंतु ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं कि चलो ज्ञान हो गया ना, आप चुप बैठो, हो गया ना ज्ञान, मालूम हो गया हम कौन है, भगवान कौन है, पता हो गया, अब बैठो आराम करो, सिनेमा देखो, कुछ और करो, क्योंकि अभी हमको पता हो गया हम कौन है, भगवान कौन है। बोलते नहीं, अभी हमको सेवा करना चाहिए 24 घंटे। भगवान प्रभुपाद बोलते हमको हमको रत रहना चाहिए, मग्न होना चाहिए। केवल एक बौद्धिक ज्ञान हो जाना कि ये है, इतना पर्याप्त नहीं है। फिर वो बताते हैं कि दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, ये भगवान के सेवा में सतत रहना, युक्त रहना, ये है दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। कौन सा श्लोक है ये भगवद गीता का? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भजन्ति अनन्य मनसो, ये अनन्य भजन करना, भजन मतलब सेवा, सेवा में युक्त रहना, तो पूर्ण सब समय सेवा में मग्न रहना, ये दैवीं प्रकृति माश्रिता का लक्षण है कि हम भगवान के दिव्य प्रकृति में, दिव्य आध्यात्मिक शक्ति में हम मग्न हैं, अन्यथा हम महात्मा नहीं कहलाते। फिर उन्होंने और एक तथाकथित महात्मा का उल्लेख किया उस प्रवचन में, कहा कि केवल राजनीति के क्षेत्र में रहने से हम महात्मा नहीं बनते, केवल समाज सेवा करने से हम महात्मा नहीं बनते, भगवान की सेवा में पूरी तरह से रत रह के ही हम महात्मा बनते हैं। और ये एक क्रियाशीलता का प्रतीक है, क्रियाशीलता है भक्त का लक्षण। ऐसे नहीं कि केवल श्रवण करे और कुछ नहीं करे। तो इसलिए ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रवण के द्वारा, ये इसका एक स्वाभाविक परिणाम होता है कि हम सेवा में लग जाते हैं।
जैसे भगवत गीता में और एक श्लोक है कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ, फिर शरणागत हो जाते हैं। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुनाम बहुत जन्मों के ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वो मेरे शरण में आ जाता है। वासुदेव सर्वमिति भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व है ये जानकर। तो जब हम जानते हैं कि वासुदेव सर्वस्व हैं तो एक जान के क्या होगा, जानने के बाद कुछ करना भी होगा, है ना, क्या करना होगा, भगवान की सेवा करना होगा। और ये केवल बौद्धिक बात नहीं है, अपने समस्त इंद्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए इसके लिए। और क्योंकि प्रेमा भक्ति हमारा लक्ष्य है, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का जो एक शुद्ध रूप है, परिणाम है, वो है दिव्य प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति जैसे यहाँ भगवान स्वयं बताते हैं, स मई स्थितः, ऐसा व्यक्ति मुझ में स्थित होता है। मुझ में स्थित होने का मतलब क्या, क्योंकि वह सदैव मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। तो भगवान में स्थित होने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति जाके घर के अंदर बैठ गया, नहीं। जब एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है, आश्रित हो जाता है, तो उसका क्या लक्षण, पूरा आश्रय लेना, निर्भर रहना पूरी तरह से। तो शरणागति ये एक क्रियाशील अवस्था है। तो क्रियाशीलता में हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। ऐसे भी हम नहीं बोल सकते चलो हमें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, ज्ञान के बाद हमें प्रेम भी प्राप्त हो गया, चलो अभी तो प्रेम प्राप्त हो गया ना, अभी बैठे रहो आराम से, नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी चुपचाप बैठना नहीं है, और ज्ञान के बाद प्रेम प्राप्त करने के बाद भी चुपचाप नहीं रहना, फिर क्या करना है, और भी सेवा में यत्रत रहना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब भक्ति का की परिभाषा की या भक्ति का अनुवाद किया अंग्रेजी में, तो उन्होंने क्या किया,
डिवोशनल
सर्विस, केवल डिवोशन नहीं किया, भक्ति वास्तव में डिवोशन है, प्रेम। तो भक्ति का अनुवाद उन्होंने केवल भक्ति का डिवोशन करके नहीं किया, डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। तो भक्ति में का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया उन्होंने, उसमें सेवा भी जोड़ दिया उन्होंने। क्यों किया ऐसे, क्योंकि सेवा के बिना भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। हम प्रेम करते हैं लेकिन सेवा नहीं करें, क्या मतलब ऐसे प्रेम का। तो एक बार मुझे याद है, मैं एक सत्संग में गया था, तो बहुत सारे लोग थे, तो एक माताजी ने प्रश्न पूछा, आप इतना जोर दे रहे हैं कि हमको जप करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना सेवा करना चाहिए, परंतु सेवा का क्या जरूर, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है ना मेरा। तो मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे हैं? बोले हाँ। तो कितने बड़े आप? वो बड़े हो गए थे, अभी बड़े होके उनके भी बच्चे हुए थे। तो बोला, जो आप जो आपके बच्चे जब छोटे थे तो आप उनसे प्रेम करते थे ना, बच्चों से? हाँ बिल्कुल करते थे। तो जब बच्चे बीच रात को जगते थे या रोते थे, कुछ करते थे, या उनको जब भूख लगती थी तो आप क्या करते थे ना, उनको भोजन पका के देते थे या जो भी उनको चाहिए था वो। तो क्या आप ऐसे बोलती थी क्या, नहीं बेटा मैं आपसे प्रेम करती हूँ लेकिन भोजन खुद बना के लेना चाहिए, रात को कुछ तकलीफ हो रही है, बीमार है, बुखार है, हाँ तो उनसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन ये बुखार बुखार को मुझे मत बोलो, प्रेम है हृदय में, कुछ करूँगी नहीं, ऐसे बोलते थे आप? नहीं, क्या करते थे आप? क्रियाशील रहते थे ना, सेवा करते थे ना आपके बच्चों की। आप ऐसे ही बोलते थे कि प्रेम है, सेवा क्यों करना है, हृदय दिल में प्रेम है, बच्चे को कष्ट हो रहा है बाबा दिल में तुम्हारे पर बहुत प्रेम। जब दिल में है तो उसको व्यक्त भी करना चाहिए ना। कैसे व्यक्त करोगे? केवल वचनों से? हाँ, वचन भी जरूरी है, परंतु उतना ही क्या? मेरे बेटा तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ ठीक है, और बच्चा रो रहा है, बुखार है, भूख है, भूख लगा है, नहीं प्रेम करती हूँ। ऐसे प्रेम का क्या मतलब? प्रेम को प्रकट कराना चाहिए क्रियाशीलता से, क्रियाशीलता मन से, वचन से और काया से होती है, जैसे पूर्व श्लोकों में भी यहां पर यही बताया गया है। तो जब आत्मा, सबसे पहले श्रवण, भक्तों का संग, श्रवण, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और फिर प्रेम, और साथ साथ हर स्तर में सेवा की आवश्यकता होती है। श्रवण के लिए रुचि प्राप्त करने के लिए भी, एक योग्यता प्राप्त करने के लिए भी सेवा होती है वैष्णवों की। कौन सा श्लोक है भागवत का? मतलब
श्रवण, अच्छे भावना से जब श्रवण करते हैं तो वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव के प्रति, वासुदेव का जब श्रवण।
शुशु शब्द दान से का क्या मतलब?
श्रद्धा के साथ,
श्रद्धा के साथ
जब श्रवण करते हैं,
सेवा हम करते हैं। आगे पूरा बोलो।
वासुदेव कथा रुचि ही स्यान महत् सेवया प्राप्त पुण्य तीर्थ में सेवा।
तो के श्लोक का क्या मतलब?
महत् सेवया, महत् सेवा को जब हम करते हैं तो श्रवण करने के लिए श्रद्धा हमारे हृदय में।
महत् सेवा, जब महात्माओं की हम सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा जब करते हैं, तब वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न होती है। तो ये महत् सेवा कैसे करना चाहिए? शुशुषो श्रद्धानस्य, श्रद्धा से वैष्णवों की सेवा करने से फिर क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न होती है। तो यदि भी कोई व्यक्ति बोले कि मुझे केवल श्रवण करना है, तो श्रवण करने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, निष्ठा चाहिए, रुचि चाहिए, वो कहाँ से आएगी? श्रवण से आएगी, बराबर। लेकिन शुरुआत में ही श्रवण के लिए रुचि नहीं तो कहाँ से आएगी? भक्तों की सेवा करना है। भक्तों की सेवा करना मतलब उनके आदेशों का पालन करना, उनको प्रसन्न करना। तो ऐसी सेवा करने से श्रवण करने की रुचि आती है। श्रवण करने की रुचि जागृत होने से फिर सेवा की रुचि और बढ़ती है। सेवा और करने से फिर श्रवण और बढ़ता है। इस तरह से परस्पर एक दूसरे को पोषण देते देते श्रवण सेवा दोनों में हम आगे बढ़ते हैं और प्रेमा भक्ति हृदय में और बढ़ती है। और ऐसे व्यक्ति जब करता है, जब तक वो इस भावना में रहता है, तब तक वो मुक्त अवस्था में रहता है। कौन से श्लोक बताए यहाँ पर भगवद गीता में, भगवद गीता का तात्पर्य में? क्या अर्थ?
कोई मेरी विचारे ना, कोई मेरी
भूल गया तो फिर व्यभिचार का मतलब मालूम है ना? व्यभिचार क्या होता है?
एक जगह पे फिक्स नहीं
होता। तो अव्यभिचार
फिक्स,
बिना हटे हुए। फिर माम चाहिए
अव्यभिचार।
भी हो गए ना सोते
मतलब अनन्य भक्ति करता है
तो सब गुना वो तीन गुणों को पार कर जाता है और
समातीत अतीत मतलब
परे
पार करना और समातीत मतलब संपूर्ण रीति से सगुणे समतीत एतान
फिर
क्या क्या मतलब
वो ब्रह्मा
स्थित हो जाते तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सदैव भगवान की सेवा में रत रहता है वो मुक्त अवस्था में रहता है। लेकिन यदि कोई ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता है कि हम साधक हैं हम शुद्ध भक्त नहीं हैं तो हम मुक्त हैं कि नहीं हैं
मुक्ति के पथ के ऊपर
क्योंकि यहाँ तो बताया है भगवान ने इस श्लोक में
मुक्ति के पथ के ऊपर है
ये सही है मुक्ति के पथ के ऊपर है परंतु अभी हैं कि नहीं है इन रे बुखार वुखार नहीं ना पूछना पड़ता है अभी कोई जमाना ही ऐसे है क्या करना ऑस्ट्रेलिया के भक्त हमको बता रहे थे कि उनका दफ्तर जब शुरू हुआ ना किसी इन्हें एक बार भी छींका ना एक बार भी खांसी के उनको घर ही भेज देते जाओ आज तो ऑफिस छोड़ के चले जाओ जबरदस्ती छुट्टी उनको दे देते और ट्रेन के अंदर बस के अंदर किसी ने एक बार भी खांसी की ना तो ऐसा देखते हैं सब लोग जैसे कि दृष्टि से उसको मार डाले घबराए हैं सब लोग क्योंकि ये सब खांसी वांसी सही सब ये और वहाँ पर उन्होंने गाना भी वर्जित कर दिया अभी पब्लिक में गाना नहीं क्योंकि गाने से ज़्यादा वो फैलता है इसलिए तो आजकल और कोई बता रहे थे ना कोल्हापुर के पास भी एक व्यक्ति बस में खांसी किया तो उस बाकी लोगों ने उसको पीट दिया एक्चुअली उसको पीट दिया मारा उसको बहुत मारना नहीं बहुत महान वैष्णव अपराध हो जाएगा हाँ इसलिए कभी खांसी हो तो होता है तो थोड़ा पूछना पड़ता है कि नहीं तो हाँ ये प्रश्न था कि हम लोग साधक है तो हम मुक्त है कि नहीं है
हम जो भी कर रहे साधना वो सासु में दिया है तो इसलिए हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं तो हम साधक हैं लेकिन हम आध्यात्मिक नियम पालन कर रहे हैं इसलिए हम मुक्त है अभी पूरी तरह से नहीं लेकिन साधना कर रहे हैं
ठीक है
जब तक अनन्य भक्ति
जब तक ये मार्ग छोड़ा नहीं है तब तक मुक्त है अब जैसे ही छोड़ देते हैं
क्या मतलब छोड़ देते हैं मतलब हम है ना इधर रह रहे ना गोकुलधाम में
व्यक्ति के पास चॉइस है ना अभी अभी भी चॉइस है हमारे पास वॉलंटरली अगर हम इसी पथ में रहेंगे
इसी पथ में रहने का मतलब क्या है
मतलब भक्ति को छोड़ना नहीं
है मतलब क्या प्रैक्टिकल हमारे दैनिक जीवन में क्या मतलब इसका
साधना करना है सेवा करना है 24 घंटे निरंतर
हाँ निरंतर तो जब हम भगवान की सेवा में रहते हैं हम मुक्त रहते हैं जब भगवान की सेवा में नहीं रहते हैं तो बेड़ा इला गंडा तब नहीं करेक्ट तो मुक्त अवस्था का संबंध भगवान की सेवा से है तो जब तक हम भगवान की सेवा में हैं तब तक मुक्त जैसे ध्यान से जप कर रहे हैं ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं ध्यान से सेवा कर रहे हैं मुक्त जैसे ही हमने छोड़ दिया वो और हमारा मन किधर और हो गया, उस समय के लिए मुक्त नहीं। तो जितना ज्यादा हम ऐसे ऐसे इस भावना में रहेंगे उतने ज्यादा हम मुक्त रहेंगे, और यदि सदैव निरंतर ऐसे रहा तो सदैव मुक्त। कौन सा श्लोक जिसका उल्लेख यहाँ पे किया है तात्पर्य में, रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। सुंदर, क्या मतलब इसका, शब्द भेद करके समझो।
कोई हरि की भक्ति कर्मना मन से वाचा, कर्म से मन से शरीर से करता है तो निखिल सत्य अवस्था तो इस अवस्था में ही वो मुक्त है।
कितना मुक्त, निखिला संपूर्ण, संपूर्णता यदि वो कर रहा है सेवा, हर समय स्थित है इसमें, तो फिर
जीवन
मुक्त है स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहना चाहिए। भौतिक शरीर में होते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त कहलाता है। हाँ, ऐसे ही यहाँ जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो भगवान के संबंध है, भगवान से संबंध है, वे भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना, यही हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है भौतिक प्रकृति के रोग से, भौतिक जगत के रोग से मुक्त होने के लिए, भव रोग से मुक्त होने के लिए ये सबसे बड़ा वैक्सीन है। वैक्सीन मतलब समझे ना, टीका, अभी सब लोग ले रहे हैं ना टीका, ठीक है। तो इस तरह से भगवान विष्णु पृथु महाराज को बोल रहे हैं, वास्तव में पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने एक मुक्त व्यक्ति के तरह ही व्यवहार किया है, क्योंकि आप इस ईर्ष्या और वैर इससे परे आ गए हो। आप 99 अश्वमेध यज्ञ आपने किए और 100वां करने वाले थे, तब इंद्रदेव बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि इंद्रदेव ने 100 किए इसलिए तो इंद्र का पद प्राप्त हुआ। अभी आप 100वां कर देते तो इंद्रदेव को घबरा गए कि ये मेरे लिए एक प्रतिद्वंद्वी हो गया, ये फिर मेरे जगह में आके बैठेगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए इंद्र ने सब घोड़े चुरा लिए वगैरह, विघ्न डाले रास्ते में, परंतु अभी ब्रह्मा के कहने पर फिर पृथु महाराज ने 99 पर ही रोक दिया, ठीक है 100वां नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान तो प्रसन्न हुए हैं ना, तो फिर और आगे करने की क्या जरूरत है, और फिर वैर होना झगड़ा होना क्यों करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हुए इससे। तो हमारे जो हृदय की भावना है इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, हम बाह्य दृष्टि से जो भी कर्म करें इत्यादि वो भी अच्छा है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी भावना। क्योंकि एक दिन ऐसे आएगा जब हमारा शरीर उतना काम नहीं करेगा, जब हम शरीर से उतनी सेवा नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। अभी बूढ़े हो गए बिल्कुल, तो अभी वो सब नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमने उस समय तक अपने आप को प्रशिक्षित नहीं किया है तो फिर क्या होगा, हम उस समय बहुत बेचैन हो जाएंगे, अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए यदि हमने अच्छी तरह से अपने आप को प्रशिक्षित रखा जीवन भर सेवा करके, तो अंत में भी जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए पृथु महाराज के त्याग के ऊपर। हमारा सिद्धांत क्या है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, ये मापदंड हमारा सफलता का। ऋतु महाराज समझ गए, 100 ये आंकड़े में नहीं है कि हमने 100 किए कि 99 किए कि ये पद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, मापदंड क्या है कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं। हरे कृष्णा।
ये हमने दो दिन बाद लिखा, यहाँ पर इंद्र इंद्र को ये कर यज्ञ में, तो इससे पहले भी पढ़ रहा था, इसके बाद भी आता है जब वृत्रासुर के भाई विश्वरूप को उन्होंने उनके सिर काटे थे, हालांकि वो के गुरु थे, जब असुरों को भी ये करते थे, आहुति देते थे उसमें, और यहाँ पर भी अभी ये विघ्न आ रहे। तो मैं सोच रहा था कि इंद्र जाके सीधा पूछ नहीं सकता था क्या,
इंद्र जाके
उनको पूछ नहीं सकता था क्या कि आप जैसे कि विश्वरूप को पूछ सकता था ये क्यों करा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वहाँ पर समझा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आके प्रथम महाराज को पूछ सकते हैं कि आप क्यों, क्या आपको मेरी गाड़ी चाहिए, गद्दी चाहिए क्या, मेरा आसन चाहिए, ऐसे यानी कि पूछा क्यों नहीं सीधा सीधा आके।
ये भी हम हमारे समाज में ऐसे ही होता है ना, यदि हम जाके पूछते कितना गड़बड़ बच जाता है। वैष्णव पद्धति क्या होता है, जाके पूछना, लेकिन पूछे बगैर ही हम क्या करते हैं, पीछे से कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देते है कि नहीं। सोचिए इसमें ऐसे मेरे बारे में कहा, उसने ऐसे किया होगा, शायद नहीं भी किया होगा, तो उसने उसके मन में कुछ और विचार हुआ होगा, उसने कुछ और किया होगा उद्देश्य से, लेकिन हम कुछ सोचते समझते इसने ऐसे ऐसे किया, हम हमारा काम शुरू करते हैं पीछे से, इसके बारे में कुछ गलत बोलना, उसका नीचे खींचने का कोशिश करना, उसको कुछ राजनीति करना। इंद्रदेव पर बराबर बात कि इंद्रदेव ने जाके वैष्णव ढंग से पूछा होता कि भाई क्या करें, तो मामला निपट गया होता। लेकिन जब हमको कोई पद मिलता है, कोई ऊंचा स्थान में होते हैं, जब कोई हमारे इंद्र तृप्ति में खतरा बन जाता है कुछ, तो ये सब चले जाते हैं। इसलिए हमारे दैनिक व्यवहार में भी हमको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, वैष्णवता से जाके कुछ चर्चा करना चाहिए, फिर मामला निपट जाता है। लेकिन पूछते नहीं, क्यों मैं क्यों जाऊँ, हुआ है मेरे पास तब बात करेंगे, मैं क्यों जाऊँगा बात करने, ये सब समस्याएं आ जाती है। इंद्र आखिर क्या है, देवराज इंद्र है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो जाके क्यों पूछे। जब राजा के भाव में पूछ रहे सोच रहे हैं तो ऐसे विचार आएगा, लेकिन जब वैष्णव के भाव में सोच रहे हैं तो सोचते कौन इंद्र का राजा, कौन राजा, कौन क्या, हम सब दास हैं भगवान, जाके पूछ लेते। इसलिए ये हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम वैष्णवों के दास हैं, तब सब ठीक रहेगा। इस भावना को हमने त्याग दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम भी इस तरह से बन जाएंगे इंद्रदेव। यद्यपि इंद्र भी भक्त है, याद रखना इंद्र भक्त है। इसलिए एक वैष्णव ने एक बार कहा था कि भगवान ने असुरों को क्यों बनाया है, या भौतिक जगत में केवल भक्त होते तो अच्छा होता ना, तो बोले कि असुर नहीं होते तो वैष्णव भी असुर बन जाते। कहने का मतलब है कि असुर के डर से वो अपने भगवान के शरण में रहते हैं, इसलिए वैष्णव बने रहते हैं, और असुर भी उनको सही ठिकाने रखते हैं डर के मारे, नहीं तो इस अपद ये हो देख के फिर खुद आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे हृदय में भी आसुरी प्रवृत्ति रहती है, वो कभी कभी अपना कुरूप स्वरूप दिखाता है, दूसरों के प्रति कुछ गलत इच्छा, मन में घृणा होना या कोई ईर्ष्या होना, है ना, दूसरों को बुरा करने की इच्छा मन में आना, ये सब असुरी वृत्ति है। भक्त होने के बाद भी ये हमारे मन में आता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं थे, तो इंद्रदेव भी शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए भावना उनके मन में वो आसक्ति थी बहुत अपने पद से, इसलिए तो उन्होंने ये सब गड़बड़ किया ना 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद। यदि वैष्णव दासत्व की भावना को सदैव बनाए रखेंगे तो सब दुनिया वैकुंठ बन जाएगी। बराबर समस्त वैष्णव दास नाम भी ऐसे दिया है, हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, सब सारे वैष्णवों के दास हम।
इंद्र गड़बड़ कर रहे हैं और पृथु महाराज को आके ब्रह्मा रुका रहे, आप रुकाए, एक्चुअली इंद्र को रुकाया होता
क्योंकि जानते थे इंद्र मानने के स्थिति में नहीं है, जाके बोलेंगे भी तो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहरित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीय, वो हालत थी। जब हम कोई व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है, इतना देर हो जाता है, मुझे चाहिए ये सब, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं मान सकते। लेकिन वो जानते थे कि पृथु मान सकते, इंद्र को बताना मुश्किल, इसलिए जाके बोला भाई वो नहीं मानेगा, तुम मान लो, तुम मान लो, वो तो नहीं मानेगा ना, तुम समझदार हो, तुम ज़्यादा भक्ति में हो, तुम मान लो। कभी कभी ऐसे भी होता है ना भक्तों के बीच में, कब हो जाता है कि हम दूसरे भक्त को जाके भाई वो नहीं मान रहा, तुम तो मान लो ना, ठीक हो जाएगा सब, वो ज़्यादा पहुंचा हुआ भक्त रहता है, वो मान लेता है, फिर धीरे से वो दूसरा भी शांत हो जाता है ना, ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्रदेव अभी मानने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करेंगे, जो मानने की स्थिति में है उसको जाके बात, आखिर ये देवराज के पद में है ना, कोई साधारण तो नहीं है।
भागवतम में अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं भक्त, तो तीन रूल मन और अहंकार, जैसे अवंती ब्राह्मण बोलते हैं कि ये छह चीजें मेरे शत्रु नहीं है, बट मेरा मन ही मेरा शत्रु है, तो बहुत बार भक्त ये भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे तीन गुणों से ऊपर उठना चाहिए, या मेरा अहंकार का ये होना चाहिए। दूसरे और तीसरे स्कंध में प्रभुपाद भी ये चीज़ को लिखते हैं, तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो क्या वो मतलब सूक्ष्म रूप से उसके बीच में कुछ भेद है महाराज की तीनों चीज़ें, मतलब
हाँ एक समान ही है ना। तो अब जब मन और बुद्धि तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मन और बुद्धि आदि को तीन गुणों से परे करना है, ये बात है। मन बुद्धि शुद्ध करना है हमको, शुद्ध करने का मतलब है तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त करना है। तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त करने का मतलब है श्री कृष्ण के शरण में जाना। हरे कृष्णा, सब कैसे है, ठीक है ना, हाँ कुछ खाली खाली सा लग रहा है, ब्रजेश कृष्ण का है, हाँ वो उधर और सुनार गौरहरि कहाँ है, दोनों
हमटे
में है,
नागपुर से अभिराम नहीं था तो उनके बड़े भाई आए थे, उधर से वो आए तो
सब लोग कहाँ रह रहे हैं, हमटे में, वो मंदिर का जो पास में एक घर है उसमें
उनका उनका घर में, राजेश कृष्ण को उनका घर में है, सोनाल गोरे को उनका घर में,
तो सारे क्रियाएं वगैरह सब हो गई ना
अभी, अभी सातवां दिन, सातवां दिन
देखो ऐसा है ये भौतिक जगत, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्षणभंगुर, किसी भी क्षण भंग हो सकता है, है ना? हरे कृष्णा। सबको फूल का याद है कि नहीं, प्रोजेक्ट कि नहीं, फूल उगा रहे कि नहीं, सब अपना अपना के भूल गए, सब अभी भूल गए ने? कहा मुझे दिख तो नहीं रहा कुछ
अभी नहीं आता बारिश हो रही
नहीं, तो उसको अलग से कर सकते ना कुंडी में। कई तो कई फूल आते हैं, बहुत सारे फूल हैं। चंपा का फूल कितना अच्छा आता है,
बारिश में अभी फूल लगते नहीं उसको ये सीजन में।
हम तो लेकर आए बेलगाम से,
यहाँ पे बारिश जो है वो सड़ना शुरू है। सोन चापा इसी सीजन में मिलता है, लेकिन इस वातावरण में है बहुत कम, इसमें मिले तो एक या दो से ज़्यादा। जब बचपन से देखते आए हैं, हमारे इसमें चंपे का पेड़ था मंदिर के सामने, बहुत सारे फूल आते थे, लेकिन जैसे वर्षा शुरू हो जाती थी सड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर कम होते जाते हैं।
कदम्बा फूल आए
थोड़े तो फूल हैं, ऐसा नहीं, प्रकृति में ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक ऋतु में फूल ही नहीं है। कौन सा फूल आता है उसको देखो, है कि नहीं?
बारिश बंद है,
लेकिन ये सामने का अच्छा हो गया, इधर एक सीढ़ी बना दिया, उधर गार्डन में जाने के लिए सीढ़ी बना दिया, बैठने का बेंच बना दिया। अच्छा ज्ञानेश्वर ने हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, श्री गोकुल धाम वासी की जय।